चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपको धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं कि आपका समय निकालकर आप सब यहाँ इस उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। हमारी वैदिक सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता आध्यात्मिक जीवन पर आधारित है। ये हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे सभ्यता का नींव है, बुनियाद है। इसलिए इतने हजारों हजारों सालों के बाद भी हमारी संस्कृति अभी तक बनी रही है। यद्यपि पिछले 40-50 वर्षों में काफी पाश्चात्य संस्कृति का प्रहार जैसे हो चुका है, परंतु फिर भी ये आध्यात्मिक संस्कृति चलती आई है। और जब तक ये आध्यात्मिक संस्कृति हमारे देश में रहेगी तब तक यह सभा सारा समाज ये प्रसन्नता से रह सकता है, सारा समाज समृद्धिपूर्ण और सुखमय हो जाएगा। परंतु आजकल हमारे भक्तिमय और आध्यात्मिक संस्कृति को त्याग कर लोग भोगवाद और नास्तिकवाद की ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़े जा रहे हैं। यदि हम किसी को प्रश्न करें कि आधुनिक काल में सबसे बड़ा रोग कौन सा है, तो अनेक लोग कहेंगे हो सकता है एड्स हो, या टीबी हो, पीलिया हो, ये ऐसे कोई बीमारियों का, रोगों का वो नाम लेंगे। परंतु वास्तव में आधुनिक काल की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमारे मांगों की कोई कमी नहीं है। हम और चाहते हैं और चाहते हैं और चाहते हैं, जितना भी हमारे पास हो उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। थोड़ी देर पहले हम एक सुंदर नृत्य देख रहे थे, बच्चों द्वारा प्रस्तुत, जिसमें भगवान के दशावतारों की लीला बच्चों ने नृत्य रूप में प्रस्तुत की। उनमें से वामन अवतार को भी उन्होंने नृत्य रूप में प्रस्तुत किया। वामन अवतार की कथा आप सबने अवश्य बचपन से ही सुनी होगी। भगवान ने एक पटु ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बलि महाराज से उनका सर्वस्व छीन लिया। पहले कदम से उन्होंने सारे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं था, अंततः बलि महाराज के सर पे उन्होंने रख दिया। बलि महाराज ने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण, जो कि वामन अवतार के रूप में आए थे, उनके शरण में रख दिया। परंतु इसके पहले जब वामन अवतार बलि महाराज के दरबार में आए थे, तो उन्होंने भिक्षा मांगी, जैसे कि एक ब्राह्मण या ब्रह्मचारी एक राजा से मांगता है। और बलि महाराज ने कहा कि आप जो चाहो वो मुझसे मांगो और मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। वामन देव जो बटु ब्रह्मचारी के रूप में आए थे, उन्होंने केवल तीन कदम जमीन मांगी और बलि महाराज उनको टोकने लगे और कहने लगे कि लगता है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है, हे ब्रह्मचारी, तुम मेरे पास आए हो, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली राजा मैं हूँ, मैं तुम्हें एक ग्रह या एक लोक भी प्रदान कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कोटि कोटि कामधेनु गाय दे सकता हूँ दान में, मैं तुम्हें सोना आदि दे सकता हूँ, बहुत कुछ दे सकता हूँ, परंतु तुम मुझसे केवल तीन कदम भूमि मांग रहे हो। इससे ये स्पष्ट है कि तुम अल्प बुद्धि वाले हो। उस समय वामन देव ने कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त किया गया जो धन है, संपत्ति है इत्यादि, उससे संतुष्ट नहीं होगा, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। यदि मैं तीन कदम जमीन लेकर संतुष्ट नहीं रहा, तो यदि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड भी प्राप्त हो जाए, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। इसलिए मेरे लिए ये तीन कदम जमीन ही पर्याप्त है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, एक उपदेश है। देखिए, इस जीवन में हर एक व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है और भौतिक दुखों से मुक्त होना चाहता है, ये स्वाभाविक है। हर प्राणी, हर मनुष्य ऐसे चाहता है। परंतु मनुष्य जीवन में आके हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जितना भी सुख और दुख हमें मिलना है इस जीवन में, इस जन्म में, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार ही मिलेगा। हमें किंचित भी इससे अधिक नहीं और इससे कम नहीं मिलेगा। जैसे हमारे कपाल के ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही हमें सुख और दुख मिलकर ही रहेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने भाग्य से प्राप्त जो भी सुख दुख होता है उससे संतुष्ट रहता है और अपने भाग्य के विरुद्ध संघर्ष नहीं करता है। तो जो व्यक्ति भाग्य के विरुद्ध संघर्ष करता है वो सदैव असंतुष्ट रहता है। परंतु जो व्यक्ति शांति और सुख चाहता है जीवन में, वो अपने भाग्य से संतुष्ट रह के अपना जो समय है, अपनी मानसिक शक्ति है, अपनी मति है या बुद्धि है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए लगाता है। इसलिए मनुष्य जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, बल्कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुपिन्दराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभि समानाः। ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्यों में और पशुओं में चार वस्तु होते हैं जो समान होते हैं, पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, और वो कौन से हैं चार वस्तु? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। परंतु मनुष्यों में एक विशेषता है जो कि पशुओं में नहीं पाया जाता है, और वो है धर्म। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, वो अधिक विशेष गुण जो कि मनुष्यों में है और पशुओं में नहीं है वो है धर्म। और जब मनुष्य धर्महीन हो जाता है तो वो पशु तुल्य बन जाता है। धर्मेन हीन पशु भी समानाः। इस संदर्भ में हम आपको एक कहानी बताना चाहते हैं जिससे हम बहुत महत्वपूर्ण उपदेश सीख सकते हैं। इसमें कई उपमाएं हैं, दृष्टांत हैं। एक बार एक राजा था, बहुत धनी था, बहुत शक्तिशाली था, उसका राज्य बहुत बड़ा था और वो बड़ा सुखी था। उसकी चार रानियां थीं और चार रानियों के साथ वो रह के अपने राज्य को संभालता था। लेकिन एक दिन हुआ ऐसे जैसे कि हर एक व्यक्ति के साथ होना चाहिए और होगा, उसे ऐसी बीमारी हो गई कि वैद्य ने कहा कि अब अधिक समय जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, हे राजन, अभी आप मृत्यु के द्वार में खड़े हो गए हो। तो राजा बहुत बेचैन हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए, मैं मृत्यु के द्वार में खड़ा हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मेरा इतना बड़ा राज्य है, मेरी ऐसी आज्ञाकारी प्रजा है जो मुझसे प्रेम करती है, मेरे चार रानियां हैं, इतना सुख मेरे जीवन में है, और अभी मैं इस संसार को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हूं। परंतु क्या करते, प्रकृति के नियम में सभी लोग बंधे हुए हैं, चाहे राजा हो या रंक। कोई भी व्यक्ति संसार के कड़े नियमों से मुक्त नहीं है। इसलिए भक्त प्रह्लाद श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ते पीश तंत्रामुरुदाम निबद्धाः, कि हर एक व्यक्ति प्रकृति के कड़े नियमों से इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। कभी कभी एक मक्खी एक मकड़ी के जाल में अटक जाती है, और अटक जाने पर वो अपने पंखों को अपने पैरों को छटपटाती है मुक्त होने के लिए। लेकिन जितना ज्यादा वो मक्खी संघर्ष करती है उस मकड़ी के जाल से मुक्त होने के लिए, उतने ही सख्त रूप से वो और बंध जाती है। केवल जब कोई बाहर से व्यक्ति आके उस मकड़ी के जाल से उस मक्खी को मुक्त करे, तभी ही वो मुक्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रकृति के अधीन है, कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए आदि हर एक देश में कोई ना कोई ऐसे क्रांति होते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। लोगों की धारणा होती है कि हम ऐसे करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, परंतु ऐसे नहीं होता। हम में से हर एक जीव प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के तीन गुणों के अधीन होकर हम बद्ध हैं। तो राजा भी समझ गए कि अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं है, मुझे संसार छोड़ के जाना ही होगा। तो बहुत दुखी हो गए वो राजा, तो अपने चौथे पत्नी को बुलाया। वो इस चौथे रानी से बहुत प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। चार रानियों में से इस एक रानी के प्रति राजा के हृदय में बहुत अधिक प्रेम था, और इस रानी से पूछा कि देखो, अब मुझे संसार छोड़ के जाने का समय आया है। अब वैद्य भी कहते हैं कि मुझे और जीवित रहने की संभावना नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूं, तुमने जीवन में मेरा साथ दिया है, अब तुम मेरे साथ चलो। तो उस चौथे रानी ने, जिसके ऊपर राजा ने इतना ध्यान दिया था, इतना लाड़ प्यार किया था, इतने उपहार आदि दिए थे, उस चौथे रानी ने बड़े कटु भाव से एक शब्द में उत्तर दिया, नहीं। तो ये एक शब्द सुनकर राजा को ऐसे लगा कि रानी ने कोई शब्द नहीं कहा, रानी ने एक ऐसा तीर छोड़ा है जो कि सीधे मेरे हृदय के आके हृदय पे आके लग गया है। राजा के दुख की सीमा नहीं रही कि इस रानी के ऊपर मैंने इतना ध्यान दिया और आज ये इस तरह से बात कर रही है और मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो तीसरे रानी के पास गए और वही बात कही कि इस संसार छोड़ के जाने का समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब ये तीसरी रानी ऐसी थी जो वैसे बहुत सुंदर थी, और राजा इस तीसरे रानी को सब जगह समाज में दिखाया करते थे, समाज में उसे प्रदर्शित करते थे, सब जगह दिखावा करते थे इस रानी का, क्योंकि ये रानी वास्तव में बहुत सुंदर थी। तो जहां भी राजा जाते थे तो इस रानी को अवश्य सामने रखते थे कि देखो ये मेरी रानी है। लेकिन जब राजा ने ये प्रश्न किया उस तीसरे रानी से कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे संसार छोड़ के जाने का समय आया है, तो जो उत्तर उस रानी ने दिया, राजा और भी अधिक दुखी हो गए। पहले ही चौथे रानी के उत्तर से वो दुखी हुए ही थे, लेकिन तीसरे रानी के उत्तर सुन के प्राय उनको हृदय का दौरा ही हो गया। तीसरे रानी ने उत्तर दिया नहीं, लेकिन यहां तक वो रुकी नहीं। कम से कम चौथी रानी ने ना कह के वही बात रोक दी थी, लेकिन तीसरे रानी ने बात आगे बढ़ाई, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, बल्कि जैसे ही आप जाओगे मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। तो बेचारे राजे की दशा क्या होगी हम समझ सकते हैं। तो बहुत ही हैरान हो गए, बहुत निराश हो गए। फिर सोचा कोई बात नहीं, अभी ठीक है, क्या करें, कम से कम मेरे दूसरे और दो रानियां तो हैं, उनके पास जाके तो मैं पूछ सकता हूं, अवश्य वो मेरा साथ देंगे। तो वो तीसरे रानी के पास गए। अभी तीसरी रानी ऐसी थी जो कि सदैव राजा के साथ में रहती थी, राजा को अच्छे सलाह दिया करती थी। और राजा ने जब आके उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी परलोक, इस जीवन का अंत होना है मेरा अभी शीघ्र ही, तो तीसरे रानी ने उत्तर दिया, मैं तो आपके साथ केवल स्मशान तक आऊंगी, उससे आगे मैं नहीं आ सकती। तो बेचारा राजा जो है, हम कल्पना कर सकते हैं कि उसकी दशा क्या हुई होगी। वो तो प्राय दुख के मारे वहां पे गिर पड़े। और ठीक उसी समय एक आवाज उन्होंने सुनी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी हे राजन। तो वो कौन थी? वो पहली रानी थी। अब तीन रानियों से ऐसे व्यवहार देखकर अब उनका पूरा हृदय टूट गया था, लेकिन अब उन्होंने सिर उठा के देखा कि पहली रानी वहां पे खड़ी थी। और वो पहली रानी ने कहा कि हे राजन, मैं आऊंगी आपके साथ में। तो ये पहली रानी ऐसी थी जिसके ऊपर राजा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, लापरवाही की थी। राजा दूसरे तीसरे और चौथे नंबर के रानियों के साथ में सदैव रहते थे, उनको प्यार प्रेम देते थे, उनके साथ समय बिताते थे, लेकिन पहले रानी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। लेकिन फिर भी ये पहली रानी थी जिसने आके राजा के सामने कहा कि मैं आपके साथ आऊंगी परलोक, जहां भी आप जाओगे मैं आपके साथ में आऊंगी। तो उस समय राजा बड़े प्रसन्न हुए, परंतु साथ साथ उनको बड़ा दुख और संकोच इस बात का हुआ कि आज मुझे पता चला है कि वास्तव में मेरे शुभचिंतक कौन है। इन तीन रानियों ने ऐसे मेरे पीठ में छुरा मार दिया है, परंतु ये एक रानी है जो वास्तव में मेरी रानी बनने के योग्य थी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि मैंने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। परंतु देखो कैसे अच्छे गुण हैं इस रानी के, कि मेरे उसके ऊपर ध्यान न देने के बावजूद वो मेरे साथ परलोक आने के लिए तैयार है, मृत्यु में भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है। तो ये एक कहानी है जिसमें कई उपमाएं हैं। राजा कौन है? राजा हमारे आत्मा का प्रतीक है। भगवत गीता का ये प्राथमिक ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा अमर है, शाश्वत है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचिन्, ये आत्मा का न कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है, ये सदैव रहता है, चेतन अवस्था में जीवित रहता है, और जब ये शरीर का नाश होता है तब ये आत्मा का नाश नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर का नाश तो होना ही है, आज नहीं तो कल, परंतु आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु ये क्या चीज है? मृत्यु वो घड़ी है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक आत्मा शरीर को चलाती है, और ऐसे प्रतीत होता है कि शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, सो रहा है, अनेक कार्य कर रहा है, परंतु जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है वैसे ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। न शरीर खा सकता है, न पी सकता है, न बोल सकता है, न कुछ कर सकता है। जब आत्मा शरीर के अंदर रहती है तो ऐसे प्रतीत होता है कि शरीर ही जीवित है, कि शरीर ही कार्य कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हर अवस्था में हमारा शरीर मृत है, जीवित नहीं है। केवल आत्मा शरीर के अंदर होने के कारण हमें ऐसे लगता है कि शरीर जीवित है, परंतु शरीर तो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए शरीर न कभी जीवित था, न अब जीवित है, और न कभी भविष्य में जीवित रहेगा। केवल जब आत्मा शरीर में रहती है तब ऐसे प्रतीत होता है कि शरीर जीवित है, क्योंकि शरीर क्रियाशील होता है उस समय। जिस प्रकार से एक गाड़ी में एक ड्राइवर बैठ जाता है तो गाड़ी चलती है, तो किसी को, किसी अज्ञान व्यक्ति को लगे कि ये गाड़ी भी कोई व्यक्ति है, लेकिन गाड़ी व्यक्ति नहीं है, गाड़ी जीवित नहीं है, केवल ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है, वो गाड़ी चला रहा है, इसलिए अज्ञानी व्यक्ति को लगता है कि ये गाड़ी जीवित है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा शरीर को चला रही है। तो इस कहानी में, इस उपमा में वो राजा कौन है? वो राजा हमारी आत्मा है, वो हम सब हैं, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। जब आप हर दिन अपना चेहरा किसी आईने में या दर्पण में देखते हो तो हमें जान लेना चाहिए कि हम जिसे देख रहे हैं वो हम नहीं है, वो हमारा शरीर है, वो हमारे आत्मा के लिए एक वाहन मात्र है। तो ये राजा आत्मा है, और ये चौथे रानी कौन है, किनकी उपमा या किनकी प्रतीक है? हमारे शरीर के। तो आत्मा के कई रानियां हैं, एक रानी है ये शरीर। हम इस शरीर से कितना प्रेम करते हैं, इस शरीर का कितना देखभाल करते हैं, बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इतना लाड़ प्यार करते हैं इस शरीर का, इसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, इसे खूब सुख देने का प्रयास करते हैं, बल्कि अधिकतर लोग तो शारीरिक सुख के लिए ही जीते हैं। दुनिया में, विशेष करके आधुनिक काल में, बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इसलिए अधिकतर लोग केवल अपने शरीर के सुख के लिए जीते हैं। और सोचते हैं कि यही सफलता है। जितना ज्यादा मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को या मेरे शरीर से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको सुख देने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो जैसे वो राजा ने चौथे पत्नी या चौथे रानी के ऊपर बहुत ध्यान दिया, बहुत प्रेम किया उस रानी से, ठीक उसी प्रकार से हम हमारे शरीर के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और ये भूल जाते हैं कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूं। आत्मा की संतुष्टि के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। यदि मैं केवल शरीर के पीछे मैं रहूंगा तो वास्तविक शांति कभी नहीं प्राप्त करूंगा। अवश्य शरीर का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो गाड़ी में पेट्रोल भरना चाहिए, जब गाड़ी में कोई तकलीफ होती है तो ठीक ठाक करना चाहिए, टायर में हवा भरना चाहिए, जितने भी चीजें हैं गाड़ी को ठीक ठाक रखने के लिए वो करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को 24 घंटे गाड़ी साफ करना चाहिए, ठीक ठाक करना चाहिए। जितना आवश्यक है गाड़ी को चलायमान रखने के लिए उतना बस गाड़ी की सेवा करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ अवस्था में रखने के लिए जितना चाहिए बस उतना ही शरीर का देखभाल करना चाहिए। इससे अधिक और शारीरिक भावना में रहना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम भूल जाएंगे कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। और जो व्यक्ति अपने शरीर की ओर अधिक ध्यान देता है वो आत्मा के कल्याण के लिए कैसे कार्य कर पाएगा, ये संभव नहीं है। इस दुनिया में अक्सर शारीरिक सुख के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, तरह तरह के विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। वो कहते हैं कि हे राजन, इस दुनिया में अधिकतर लोग संसारी होते हैं, उनको आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, केवल संसारी कार्य करते रहते हैं, संसार से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा बातचीत करते रहते हैं, अपश्यताम आत्मतत्वम। ये जो आत्म तत्व है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसके बारे में कोई रुचि नहीं है, अपश्यताम वो नहीं देखते हैं। गृहेषु गृहमेधिनाम, उनकी चेतना उनकी मति केवल अपने संसार तक सीमित है। कैसे ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, कैसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए, कैसे हमारे घर को और बड़ा बनाना चाहिए, केवल ऐसे चीजों में उनकी बुद्धि लगी रहती है। तो यदि हम शरीर के ऊपर आवश्यकता से अधिक ध्यान देंगे तो फिर आत्मा की ओर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे कि हमारा कल्याण फिर नहीं होगा। तो जैसे वो राजा उस चौथी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा ध्यान देते थे उसे, हम भी इस शरीर को बहुत ध्यान देते हैं, आवश्यकता से ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा तो उस समय हम शरीर को साथ में नहीं ले जा पाएंगे। यदि हम उस शरीर से कहें कि आप भी मेरे साथ चलो तो शरीर नहीं आएगा, शरीर यही रह जाएगा, हम चले जाएंगे, हम अर्थात आत्मा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति, कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से इस शरीर में, इस जीवन में रहते हुए भी आत्मा शरीर बदलते रहती है, बचपन से लेकर युवा अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था, ठीक उसी प्रकार से वृद्ध अवस्था के बाद जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर भी किसी नए शरीर को धारण करती है। तो शरीर हमारे साथ में नहीं जाएगा। तो ये राजा की चौथी पत्नी है। तो राजा की तीसरी पत्नी कौन है, जिसको कि राजा हमेशा सबके सामने रखते थे, सबको दिखाते थे कि देखो ये मेरी रानी है, देखो कितनी सुंदर है। तो आत्मा के लिए ये तीसरी पत्नी कौन है? ये है हमारे जीवन में हमारा धन, हमारी संपत्ति और समाज में हमारी प्रतिष्ठा। जब हमारे पास कोई धन संपत्ति प्रतिष्ठा आदि आ जाती है तो हम सारे समाज में दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास कितना बड़ा घर है, कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास कितना धन है, अच्छे कपड़े हैं। और हम जब प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी छवि, हमारी तस्वीर समाचार पत्र में छपे, हम बहुत और भी प्रसिद्ध हो जाएं। तो इसलिए हम हमारे धन प्रतिष्ठा आदि को सबके सामने रखना चाहते हैं। परंतु जब हमारे मृत्यु का समय आएगा तो क्या हम हमारे धन को साथ में ले जा पाएंगे? क्या हमारे प्रतिष्ठा को भी साथ में ले जा पाएंगे? नहीं, एक पैसा भी साथ में नहीं ले जा पाएंगे, एक शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं ले जा पाएंगे, सोना चांदी गहने कुछ नहीं ले जा पाएंगे। तो फिर क्या लाभ है? जब हमें पता है कि हम साथ में कुछ नहीं ले जा पाएंगे तो हम इतना अति परिश्रम क्यों करते हैं इस चीज के लिए? एक बात के ऊपर विचार कीजिए कृपया। यदि मैं आपके पास आऊं और कहूं कि आप इस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए और मैं आपसे निश्चित कहता हूं कि एक महीने में ये कंपनी डूब जाएगी और आपके पैसे भी डूब जाएंगे, लेकिन आप ये कंपनी के शेयर खरीदिए, तो आप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। यदि हम आपसे कहें कि ये बैंक है, इस बैंक में आप पैसे जमा कीजिए और अवश्य 6 महीने में ये बैंक डूब जाएगा, आपके पैसे भी डूब जाएंगे, तो अवश्य आप उस बैंक में पैसे नहीं जमाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारा शरीर भी वैसा ही है, ये डूबने वाला एक वाहन है, डूबने वाली जहाज है। जब हम एक नदी पार करते हैं और यदि मैं आपसे कहूं कि इस नौके में बैठिए, ये नौके के अंदर बहुत छेद हैं और बीच रास्ते में पहुंचते ही ये नौका डूब जाएगा, साथ साथ आप भी डूब जाएंगे, तो आप नहीं जाएंगे और नहीं बैठेंगे उस नौके में। तो ये वाहन, ये शरीर भी एक वाहन है जो आज नहीं तो कल डूबने वाला है। कब डूबेगा हम ये नहीं बता सकते, मृत्यु कब आएगी हम नहीं कह सकते, परंतु आएगी तो निश्चित, क्योंकि जैसे उस जहाज में, उस नौके में छेद हैं, उसी प्रकार से ये वाहन में भी छेद हैं और ये डूबते जा रहा है। केवल जब हम बहुत तरुण अवस्था में रहते हैं हमें लगता है कि हम हमेशा जीने वाले हैं, हम बहुत कुछ करेंगे, परंतु जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है और शरीर हमारा साथ नहीं देता और संसार के कष्ट हमारे मन में आते हैं, तनावपूर्ण हमारा जीवन हो जाता है, तब हमें लगता है कि अरे रे ये अच्छा जीवन नहीं है, इतने सारे कष्ट और तनाव हमारे जीवन में हैं। तो ऐसे ये शरीर का नाश निश्चित है। तो फिर इस नश्वर शरीर के ऊपर हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? इतने पैसे हम इस बैंक में क्यों जमा कर रहे हैं? आत्मा को भूल रहे हैं और केवल इस शरीर के ऊपर इतना ध्यान देकर हमारे मनुष्य जीवन का मूल्यवान समय हम व्यर्थ गवा रहे हैं। महाभारत में यह प्रसंग आता है कि जब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को बचाने के लिए हिमालय में और भी आगे चढ़ते गए, जब एक यक्ष से उनकी मुलाकात हुई और वो यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से कि मैं आपके भाइयों को पुनः जीवित कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे अनेक प्रश्न करने वाला हूं और इन प्रश्नों के सही उत्तर आपको देने चाहिए। यदि एक भी उत्तर आपने गलत दिया तो आपके भाइयों को मैं नहीं लौटाऊंगा, बल्कि आपको भी मैं गिरफ्तार कर लूंगा। तो ये बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है महाभारत का, जिसे यक्ष प्रश्न कहते हैं। वो यक्ष वास्तव में यमराज थे, मृत्यु के देवता। तो उन्होंने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर महाराज बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे। वास्तव में वो तो धर्मराज के ही पुत्र थे। उन्होंने अच्छे अच्छे उत्तर दिए। फिर एक प्रश्न जो उस यक्ष ने किया महाराज युधिष्ठिर से, वो ये था कि हे राजन, ये बताओ कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। अब ऐसा विचित्र प्रश्न है कि हमें यदि ऐसे कोई प्रश्न करे तो हम सोचेंगे कि क्या सही उत्तर हो सकता है इसका। अनेक चीजें आश्चर्यजनक होती हैं जीवन में, तो सबसे आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है संसार में? लेकिन युधिष्ठिर महाराज बहुत बुद्धिमान थे, तत्वज्ञ थे। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, अहन्य अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यमतः परम्। वो कहने लगे कि हे यक्ष, इस दुनिया में हम देखते हैं रोज अहन्य अहनि, अहनि मतलब दिन में, दिन ब दिन हम देखते हैं भूतानि, प्राणी जो हैं, गच्छन्ति यमालयम्, यम के दरबार में जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु होती है। तो प्रतिदिन हम देखते हैं कि सैकड़ों प्राणी, मनुष्य आदि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन शेषाः जो बचे हुए हैं, स्थावरम इच्छन्ति, वो सोचते हैं कि मृत्यु मुझे नहीं आएगी, मैं सदैव जीवित रहूंगा। किम आश्चर्यम अतः परम, कि इससे आश्चर्यजनक वस्तु कौन से हो सकती है। और यक्ष बड़े प्रसन्न हुए, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने महाराज युधिष्ठिर। तो बात यही है, हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है, और विशेष करके ये मूल्यवान मनुष्य देह है, जिस देह को प्राप्त करके ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें हम मन जीवन को सफल बना सकते हैं। और ऐसे समय हम मनुष्य जीवन के वास्तविक ध्येय को भूलकर केवल शारीरिक भोग करने में व्यस्त रहते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है कि यदि आप इस जीवन में भोग करके सुख पाना चाहते हो, कम से कम प्रयत्न करना चाहते हो, आप भौतिक जीवन में सफल होना चाहते हो, तो आपको भूल जाना चाहिए कि आपकी मृत्यु होने वाली है। और यदि आपको आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, जो कि वास्तव में सफलता है, सच्ची सफलता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। तो ऐसा चाणक्य पंडित क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ध्यान में रखे कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अपने संसार में आगे प्रगति करने के लिए, खूब भोग करने के लिए उत्साह कहां से आएगा उसे? फिर वो जान जाएगा कि इतना मैं परिश्रम करूंगा, इतना तपस्या करूंगा, कष्ट लूंगा धन कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए, और किसी भी क्षण वो सब नष्ट हो सकता है, मुझसे छीन लिया जाएगा, या तो मृत्यु के समय या उसके पहले भी हो सकता है। तो फिर मैं क्यों इतना परिश्रम करूं? तो यदि व्यक्ति सत्य के बारे में सोचे तो उसका उत्साह भोग करने के लिए चला जाएगा। वो तो उसे जबरदस्ती एक भ्रम में रहना पड़ता है, एक झूठे दुनिया में रहना पड़ता है, सपनों की दुनिया में रहना पड़ता है उसे जबरदस्ती, अन्यथा वो भौतिक प्रगति के लिए प्रयत्न नहीं कर पाएगा, वो उत्साह ही नहीं रहेगा उसके जीवन में। दूसरी ओर जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, नहीं, ये शारीरिक भोग ये सब पशु भी कर रहे हैं, मुझे शाश्वत जीवन आध्यात्मिक सुख चाहिए, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो मुझे याद रखना है कि मेरा ये मूल्यवान मनुष्य समय, देह का समय, मैं व्यर्थ ही इंद्रिय सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए न बिताऊं। मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो मुझे ये समय अधिक से अधिक आध्यात्मिक जीवन के लिए लगाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को सदैव डर डर के रहना चाहिए कि मृत्यु आएगी आएगी, नहीं, बल्कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में रहता है वो निर्भयता से मृत्यु का सामना करता है, क्योंकि उसके मन में आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो मृत्यु से वो कभी नहीं डरता है। तो ऐसे निर्भयता की अवस्था को प्राप्त करना हमें चाहिए, ये केवल मनुष्य जीवन में संभव है। आपने अभिमन्यु का नाम तो सुना होगा, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, 16 वर्ष की आयु में ही रणभूमि पर उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस समय जबकि अभिमन्यु की मृत्यु हुई, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा था, और आगे चल के उस बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का बहुत शुद्ध भक्त था, अपने पिता की तरह, अपने दादाओं की तरह जो पांडव थे उनकी तरह है, और जब पांडव वनवास में चले गए, युद्ध जीतने के बाद उन्होंने कई वर्ष राज्य किया, फिर वनवास चले गए, उस समय महाराज युधिष्ठिर ने अपने पोते राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, और वो सब पांडव चले गए हिमालय में, वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया, और अनेक वर्षों बाद ऐसे श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं कि राजा परीक्षित को एक 12 वर्ष के बालक ने श्राप दिया कि आपकी मृत्यु 7 दिन में होनी है। तो राजा परीक्षित इधर उधर भागे नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गए, वकील के पास नहीं गए, वो कहीं और ज्योतिष के पास भी नहीं गए, उन्होंने स्वीकार किया कि ये हरि इच्छा है तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए और मुझे मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। तो अपने राज्य, अपने कुटुंब सब कुछ त्याग दिया, अपने पुत्र कुमार चरण जन्मे जय को उन्होंने राजगद्दी पर बिठाया और वो चले गए, और वो आए गंगा के तट पर। गंगा के तट पर आके वहां सारे ऋषि इकट्ठे हुए थे, क्योंकि सब जगह खबर फैल गई थी कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, केवल 7 दिन वो अभी जीने वाले हैं। तो सारे ऋषि मुनिगण अलग अलग स्थानों से वहां पे तुरंत आ गए। उनमें से एक मुनि थे शुकदेव मुनि, जो कि व्यास देव जी के पुत्र थे, आत्म साक्षात्कारी ऋषि थे वो। तो उनको नियुक्त किया गया कि आप राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो राजा परीक्षित ने उनसे कहा कि मैं मृत्यु के द्वार में खड़ा हूं और स्वाभाविक है कि मृत्यु का भय रहता है, तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस चीज का स्मरण करना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, किस चीज के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कि हे राजन, जो अभय होना चाहता है इस दुनिया में, मृत्यु से भी जिसको भय नहीं होना है, उसे क्या करना चाहिए। जो भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में सतत स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीर्तन आदि हम करेंगे तो मृत्यु जब आएगी तब भी हम निडर अवस्था में रहेंगे। जैसे ध्रुव महाराज के बारे में भी कथा आती है उसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। जब ध्रुव महाराज का मृत्यु का समय आया तो बिल्कुल निडर होकर मूर्तिमान मृत्यु के सर के ऊपर पैर दे के ही वो वैकुंठ की ओर चल पड़े। तो ऐसे शुद्ध कृष्ण भक्तों की दशा होती है, वो मृत्यु के लिए तैयारी करते हैं परंतु भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा का विनाश कभी नहीं हो सकता है। तो खैर, हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए कि ये समाज में जितने भी हमारे धन संपत्ति प्रतिष्ठा है वो हमें बचा नहीं सकती है, यहां तक कि हमारे परिवार के सदस्य भी नहीं बचा सकते। तो अब बात आई दूसरे रानी की ओर। ये दूसरे रानी कौन थी? ये दूसरे रानी है आत्मा के लिए हमारे परिवार के सदस्य, हमारे शुभ चिंतक आदि, हमारे मित्र। जब राजा उस दूसरे पत्नी के पास गए तो दूसरे पत्नी ने क्या उत्तर दिया कि मैं केवल स्मशान तक आपके साथ में आ सकती हूँ, उसके बाद में नहीं आऊंगी आपके साथ। तो ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया में रहते हुए हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र इत्यादि केवल स्मशान भूमि तक हमारे साथ में आ सकते हैं, उसके बाद वो हमारे साथ में नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते। इसके लिए एक श्लोक है, धनानि भूमो पशु गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने। इसका मतलब है कि जब हमारे मृत्यु का समय आता है तो उस समय हमारा जो धन है वो भूमि के अंदर ही रहेगा। देखिए, ये पुराने जमाने में रचित एक श्लोक है ना, तो उस समय में तो बैंक आदि सब नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, अपने धन को भूमि में किधर छुपा देते थे, सुरक्षित स्थान में, ताकि कोई चोरी नहीं करे। लेकिन जब ऐसे धनी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो क्या वो धन को साथ में ले जाते? नहीं, धनानि भूमो, वो धन भूमि के अंदर ही रहेगा, हम चले जाएंगे लेकिन धन भूमि के अंदर रहेगा। पशु गोष्ठे, जो हमारे गाय बैल आदि है, जो वास्तव में धन है, क्योंकि ऐसे बताया गया है गवयो धनवान धान्य धनवान, ऐसे वैदिक सभ्यता में बताया जाता था कि जिसके पास गाय बैल हैं, जिसके पास धान्य है वही धनवान है। ये पुराने जमाने की बात है। तो अगर हमारे गोष्ठ में अनेक गाय बैल हैं, वो वही गोष्ठ में ही रहेंगे, हम चले जाएंगे स्मशान भूमि। नारी गृह द्वारे जो हमारी पत्नी है या और अन्य महिलाएं हैं घर में, प्रथा उस समय ऐसी थी कि महिलाएं स्मशान भूमि नहीं जाती हैं, तो वो घर के द्वार तक ही हमारे साथ आ सकते हैं। सखा स्मशाने कि हमारे जो मित्र हैं वो भी हमारे साथ कहाँ तक आ सकते हैं, केवल स्मशान भूमि तक आ सकते हैं, इससे दूर नहीं जा सकते हमारे साथ में। जब हमें यात्रा करनी है हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। शरीर भी जब जहां हमें शरीर को रखा जाता है, जलाया जाता है, शरीर भी वहां राख होके गिर जाएगा। शरीर को छोड़ के भी हमें दूसरे स्थान में जाना होगा। तो न चौथी पत्नी साथ में आएगी, न तीसरी पत्नी साथ में आएगी, न दूसरी पत्नी, अर्थात न हमारा शरीर हमारे साथ में जाएगा, न हमारा धन संपत्ति प्रतिष्ठा हमारे साथ में जाएंगे, न हमारे सगे संबंधी परिवार के सदस्य आदि हमारे साथ में जाएंगे, कोई नहीं साथ में जाएगा। तो ये चौथे तीसरे दूसरे नंबर की रानियां हैं उस राजा के। तो पहली रानी कौन है फिर, जिसने कहा कि हे राजन मैं आपके साथ में अवश्य आऊंगी? पहली रानी है धर्म। तो हम इस मनुष्य जीवन में रहते रहते हुए जब कोई धार्मिक कार्य करते हैं, वो धार्मिक कार्य हमारे हित के लिए हमारे साथ चलेंगे और आने वाले जन्मों में भी हमारी सहायता करेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हमने धर्म की रक्षा की, धर्म का पालन करके, तो वही धर्म हमारे संकट काल में हमारी रक्षा करेगा। और धर्म क्या चीज है इस कलयुग में, जैसे दयाल चंद्र प्रभु ने अभी अभी बताया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में, इस युग का धर्म है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करना, जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। तो ऐसे भगवान श्री हरि का सतत नाम संकीर्तन करते रहने से हम सही धर्म का पालन करते हैं। ये सर्वोच्च धर्म है इस कलयुग के लिए। तो खैर, इस राजा ने देखा कि केवल मैंने धार्मिक कार्यों के प्रति ध्यान नहीं दिया, धन कमाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए इत्यादि मैंने बहुत कुछ ध्यान दिया, लेकिन धर्म के प्रति मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये धर्म ही है जो राजा का साथ दे रही थी, अर्थात वो धार्मिक कार्य ही है जो हमारे आत्मा के लिए लाभदायक होंगी, वो हमारे साथ में चलेंगे हमारे आने वाले जन्म में और वहां हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि इस मनुष्य जीवन में रहते हुए हमें धार्मिक कार्यों को अवश्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, विशेष करके भगवान कृष्ण की भक्ति के कार्यों को अवश्य हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जब हम संसार में रहते हैं हमें शरीर का देखभाल करना है, हमारे परिवार का देखभाल करना है, परिवार के देखभाल करने के लिए हमें कोई जीवन निर्वाह का साधन होना चाहिए, कोई नौकरी हो, कोई व्यवसाय हो, कुछ होना चाहिए और उसे भी ध्यान पूर्वक करना चाहिए। परंतु हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि केवल इन चीजों तक हमारी बुद्धि और हमारा प्रयास सीमित रहेगा तो ये बहुत धोखे की बात है। आगे चल के ये मूल्यवान मनुष्य देह हमसे हमेशा के लिए छीन लिया जा सकता है। तो ऐसा खतरा हमें क्यों मोल लेना है हमारे ऊपर? हमें हमारे संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए ध्यान देना चाहिए भगवान कृष्ण की भक्ति के ऊपर। ये नहीं भूलना चाहिए इस बहाने कि हमें संसार में बहुत सारे कर्तव्य हैं, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए या सोचना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़े हानि की बात हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी कृपया इस कृष्ण भक्ति के पथ को बहुत गंभीरता से लीजिए। यही एक चीज है जो आपके साथ में हमेशा रहेगी, मृत्यु के समय भी आपका साथ देगी और आने वाले जन्मों की तैयारी भी वो करेगी आपके साथ में रह के। बाहर अनेक पुस्तक उपलब्ध हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के ऊपर आधारित, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, उनको आप ले सकते हैं। घर में जाके आप इनको प्रतिदिन पढ़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और आपके जीवन को सुखमय और भक्तिमय बनाइए। आपके सारे परिवार को कृष्ण भक्त बनाइए। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि हमें संन्यास लेना है, ये बहुत गलत धारणा है। हर एक व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए भगवान कृष्ण की, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, धनी हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो गंभीरता पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करे। तो इसके लिए भक्तों का संग चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो आप इन ग्रंथों को अवश्य लीजिए और अपने घर में ध्यान से पढ़िए और इस महामंत्र का उच्चारण अवश्य आप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शायद कल भी कार्यक्रम होगा ना, तो कल भी और कथा होगी, तो सारी बातें एक ही दिन में तो नहीं कह सकते। तो कल शाम को भी आप अवश्य आइएगा और भगवत कथा का श्रवण कीजिए और इस तरह से भक्ति मार्ग में आप प्रगति कीजिए। पुनः हम आप सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप सब यहाँ मूल्यवान समय आपका निकाल कर आए, इतने ध्यान से आपने ये प्रवचन सुने। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कारवार के हमारे कृष्ण भक्तों का, जिन्होंने इतने प्रेम पूर्वक सेवा करके, परिश्रम करके इस विशाल रथ यात्रा महोत्सव को आयोजित किया है। ये प्रेम का परिश्रम है उनका। हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ से कि उनके ऊपर वो उनकी असीम कृपा बरसाएं और ऐसे आने वाले वर्षों में कृष्ण भक्ति का आंदोलन यहाँ कारवार में भी बढ़ता रहे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हरे कृष्ण। भक्त बंधुओं, अब तक आपने दयाचंद प्रभु जी और हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज जी का प्रवचन सुना। धन्यवाद हमारे की